आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10th के साइंस का फोर्थ चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था और आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है, ऑक्सीडेशन का आइडिया आप लोगों को है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा हो तो ऐसे में हम कहते हैं कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो दूसरे सब्सटेंसेस किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन टॉपिक के अंडर आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो अल्कोहल्स होते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके। आप लोगों ने एक्टिविटी 4.5 की थी, इसमें आपने क्या किया था, आपने इथेनॉल को कन्वर्ट कराया था इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज इथेनोइक एसिड। आप इथेनॉल को कन्वर्ट कराएंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के टाइम पर आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, आपने यूज किया था अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन करा के ऑक्सीडेशन करा रहा है। अल्कलाइन KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था जो था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब आप लोगों ने एक्टिविटी 4.5 की थी तो आपको कैसे पता चला था कि अल्कोहल का कन्वर्जन हो गया है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने देखा था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट आप यूज कर रहे थे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, उसको जब आप इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, बूंद बूंद करके डाल रहे थे, तो वहां पर उसका कलर जो था वो चेंज हो रहा था। जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे आप लोग अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को अल्कोहल के सोल्यूशन में डाल रहे थे, इथेनॉल के सोल्यूशन में डाल रहे थे, तो वो धीरे धीरे कलर उसका चेंज हो रहा था। उसके बाद आपने देखा कि आपने बहुत सारा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो कलर चेंज नहीं हुआ, वो पिंक का पिंक ही रह गया। तो इससे आप लोगों को ये पता चला था कि इनिशियली कलर चेंज हुआ, बाद में इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि जब आपने एक्सेस में डाल दिया था, बहुत सारा आपने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया था, तो उस वक्त उसको रिएक्ट करने के लिए कोई भी इथेनॉल नहीं बचा था, सारा का सारा इथेनॉल तो ऑलरेडी धीरे धीरे कंज्यूम हो गया था और इसीलिए वहां पर कलर चेंज नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर रिएक्शन नहीं हो रही थी बिटवीन अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड अल्कोहल इथेनॉल, और इथेनॉल का इसीलिए कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था इनटू इथेनोइक एसिड। इसीलिए आप लोगों को सेकेंड स्टेज में, सेकेंड जो आपने स्टेप किया, जब आपने एक्सेस डाल दिया, बहुत सारा डाल दिया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको वहां पर कलर चेंज नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या समझ में आया था कि हम लोग इथेनॉल का या फिर किसी भी अल्कोहल का कन्वर्जन कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम वहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो सकते हैं या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, आप पेज नंबर 71 पर देखो, जो सबसे ऊपर रिएक्शन दी है इसमें इथेनॉल का कन्वर्जन हो रहा है इनटू इथेनोइक एसिड। और यहाँ पर आप कैसे कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इथेनॉल का, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है और जाकर के जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। तो ऑक्सीजन वहां पर एड हो गया है इथेनॉल में, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन कभी भी होता है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनको अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें कमी है। किस चीज की कमी है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कमी है। अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, अगर अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हो जाएं, वो ये चाहता है, वो सैचुरेटेड हो जाना चाहता है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव और इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो अनसैचुरेशन है वो कम हो जाए किसी तरीके से और वो भी सैचुरेटेड हो जाए, इसीलिए वो रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें उनका जो डबल बॉन्ड होता है वो हट जाता है और वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसे होता है, उनमें दूसरे एलिमेंट्स का एडिशन हो जाता है। और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो एडिशन रिएक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर क्योंकि हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो एडिशन रिएक्शन भी हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें अनसैचुरेशन होती है जैसे कि अल्कीन्स या अल्काइन्स, तो इनमें जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं तो क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंगल बॉन्ड्स क्योंकि उनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। और जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन का एडिशन कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की रेट को, उसकी स्पीड को बदल देते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन के स्वभाव को नहीं बदलते हैं। जैसे कि मान लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो आप कैटलिस्ट डाल देंगे तभी एडिशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन उसकी स्पीड जो होगी वो बदल जाएगी। और ये जो एडिशन रिएक्शन है इसको हम क्यों करते हैं? इसका हम इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनका हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का, तो बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसीलिए इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। तो अगर किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हम उसको एडिशन रिएक्शन तो कहेंगे ही, साथ में उसे हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, ये जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं। लेकिन वो ऑयल्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि घी हो गया या फिर बटर हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जनरली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर हेल्दी। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनका अगर इस्तेमाल करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एनिमल ऑयल्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इसीलिए इन लोगों का जो इस्तेमाल है वो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए आप लोगों को ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें अनसैचुरेशन मौजूद होती है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 71 पर आप लोगों को एडिशन रिएक्शन में दिखाया गया है कि कैसे एक डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो आप लोगों को पता है वो जो रिएक्शन है उसकी रेट, उसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं। और जनरली हम हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए निकल का इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग मेटल्स हैं जिनका कैटलिस्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ये भी पेज नंबर 71 पर ही है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये वैसे तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ज्यादा रिएक्शन तो नहीं करते हैं। लेकिन धूप की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ये एक रिएक्शन कराते हैं जिसमें क्या होता है कि इनका जो हाइड्रोजन है उसकी जगह क्लोरीन एटम ऐड हो जाता है, और उसमें भी क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। एक एक करके हाइड्रोजन एटम्स को क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह पर जा सकता है, और वहां से हाइड्रोजन हटते चले जाएगा और हाइड्रोजन की जगह वहां पर क्लोरीन ऐड होते जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक बंदे की जगह दूसरा बंदा लग रहा है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि एक एटम की जगह दूसरा एटम जा करके लग जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मीथेन का एग्जांपल दिया गया है पेज नंबर 71 पर कि मीथेन में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होके एक क्लोरीन एटम ऐड हो जाए तो क्लोरोमीथेन मिलेगा, और एक और ऐड हो जाए तो डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आप हायर अल्केन्स यूज करेंगे जैसे कि इथेन या फिर प्रोपेन, तो उसमें आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं। क्लोरीन एटम जो है वो अलग अलग कार्बन से जाके अटैच होता है और होमोलोग्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी क्या होता है कि होमोलोग्स का वो फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर आइसोमर्स भी बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो कि पेज नंबर 71 पर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप लोगों को पता है इथेनॉल को हम एक कन्वर्जन जो है इथेनॉल का इनटू इथेनोइक एसिड, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इथेनॉल के कंपाउंड में, तो इसीलिए हम इसको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन KMnO4 विच इज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है क्योंकि ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा करके वहां पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। इसमें पूछा है कि इथाइन और ऑक्सीजन जो है अगर इनको हम बर्न करें और वेल्डिंग करने में इनका इस्तेमाल करें तो हम लोग इथाइन और प्योर ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम रिएक्शन कराएंगे, उसको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है और सूटी फ्लेम यानी कि राख कालिख वाली फ्लेम, काली काली सी स्मोकी फ्लेम, ब्लैक कलर की स्मोक वाली फ्लेम पैदा होती है और वहां पर बहुत ज्यादा कालिख निकलती है और पॉल्यूशन ज्यादा होता है और इनकम्प्लीट कम्बशन होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इथाइन का जब बर्निंग का प्रोसेस करवाते हैं वेल्डिंग करवाने के दौरान तो हम उसे प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कराते हैं ताकि हमें कम्प्लीट कम्बशन मिले और हमें लेस पोल्यूटेड जो कालिख होती है वो मिले, स्मोकी फ्लेम हमें ना मिले और हम लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले कम्बशन करा करके, जिससे कि हमारा वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो भी आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। कार्बन के वैसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारी लाइफ में सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन जो होता है वो भी कार्बन का कंपाउंड है, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जो आप लोग फ्रूट्स खाते हैं उनके उसके अंदर ग्लूकोज होता है वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है। तो वैसे तो कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हैं जिनका हम रोज रोज इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो कौन कौन से है, वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, CH3CH2OH, इस तरीके से आप इथेनॉल को लिखते हैं। इथ का मतलब है दो कार्बन है और लास्ट में ऑल लगा है तो ऑल जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इथेनॉल लिखा है इसका मतलब है कि ये एक सैचुरेटेड इथेन का अल्कोहल है। तो सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल जो होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मल भाषा में कहें तो शराब। इथेनॉल जो होता है रूम टेम्परेचर पर ये एक लिक्विड होता है, कमरों में आप लोगों ने देखा होगा बॉटल के अंदर ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, दारू की जो बोतल होती है उसके अंदर जो शराब होती है वो किस रूप में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब ये जो इथेनॉल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। इथेनॉल को कॉमनली आप लोग अल्कोहल कहते हैं और ये एक बहुत अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसको ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अलोंग विद दैट जो अल्कोहल है ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें चीजें आसानी से घुल जाती हैं, बहुत सी चीजें इसमें बहुत आसानी से घुल जाती हैं और यही कारण है कि हम अल्कोहल जो है इथेनॉल है इसका इस्तेमाल करते हैं जो कफ सिरप होता है उसको बनाने के लिए। कफ सिरप में क्या होता है बेसिकली कि इथेनॉल के अंदर चीजों को घोल करके कफ सिरप का फॉर्मेशन किया जाता है, तो मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें चीजें आसानी से घुल जाती हैं, इसीलिए इथेनॉल का इस्तेमाल हम मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। काफी सारे जो टॉनिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी वहां पर हम काफी सारी चीजों को घोलते हैं इन इथेनॉल और वहां पर टॉनिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए भी हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी हम आयोडीन को इथेनॉल में घोल करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन का कहाँ इस्तेमाल होता है आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों को छोटी बहुत चोट लग जाती है तो वहां पर उसको साफ करने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, वहां पर कोई इन्फेक्शन ना हो पाए इसके लिए हम आयोडीन का सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है हमारे घाव पर जहां पर चोट लग गई है, खुले वुंड्स हैं तो वहां पर इन्फेक्शन ना हो पाए इसमें आयोडीन हेल्प करता है, और ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इसका मतलब है कि इथेनॉल जो है उसको हम पानी में बहुत आसानी से घोल पाते हैं अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इथेनॉल लें तो आप लोगों को नशा चढ़ जाता है। आप अगर पिए इसे तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके नशा चढ़ जाता है। और यहाँ पर वैसे तो मना किया जाता है कि इथेनॉल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ये शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है, लिवर को नुकसान पहुंचाता है, आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति खराब करता है, बहुत सारे आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसका कंजम्पशन करते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं। और एक और बात यहाँ पर जानने की है कि जो इथेनॉल वो कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, वो एक ऐसा इथेनॉल होता है जो प्योर नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल प्योर इथेनॉल का इनटेक करे, बिल्कुल प्योर इथेनॉल को ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करे, उसे पिए, तो वो उनकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इट कैन बी लीथल, इसका मतलब उनकी जान जा सकती है। अगर प्योर अल्कोहल, प्योर इथेनॉल को आप इस्तेमाल करते हैं, उसे ड्रिंक करते हैं, तो इससे जान जा सकती है। और प्योर इथेनॉल को कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं होती, पूरा का पूरा प्योर ये इथेनॉल होता है। और अगर इसका कंजम्पशन किया जाए, इसको ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो व्यक्ति की जान जा सकती है। और ये तो आपको पता ही है कि अगर ज्यादा लंबे समय तक आप थोड़ा थोड़ा करके भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, इथेनॉल का कंजम्पशन करते हैं, ड्रिंक करते हैं इसे, तो आपको काफी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके काफी सारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ अलग अलग रिएक्शंस होते हैं इथेनॉल के भी। जैसे कि इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सोडियम इथेनॉएट, ये एक सॉल्ट है। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, आप किसी अल्कोहल का जैसे कि इथेनॉल, अगर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अ मेटल, और मेटल भी कौन सा मेटल, अगर आप सोडियम लेंगे, तो वहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इथेनॉएट तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है, अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम के साथ में तो वहां पर बनता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक और रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं किसी एक सब्सटेंस का तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। वो कौन सी रिएक्शन थी, अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन करवाएं मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी 4.6 करने को कहा है, पेज नंबर 72। एक्टिविटी 4.6 में आपको क्या करना है, आप लोगों को एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम लेना है, सोडियम मेटल का छोटा पीस लेना है, उसके ऊपर आप लोगों को या तो आप इथेनॉल की डायरेक्ट कुछ बूंदे डाल दो, या फिर आप ऐसा करो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल लो, जो प्योर अल्कोहल होगा, प्योर इथेनॉल होगा, और उसको क्या करोगे, आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में लोगे और उसके अंदर आप लोग ये जो छोटा पीस लिया है अपने सोडियम मेटल का, इसको आप उस एब्सोल्यूट अल्कोहल में यानी कि प्योर इथेनॉल में डाल दोगे। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि उसमें कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, कुछ गैस निकल रही है उस रिएक्शन होने के बाद। वो गैस कौन सी है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। अब आप इसे कंफर्म कैसे करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो आप लोगों को याद होगा कि हाइड्रोजन गैस कहीं पर इवॉल्व हो रही है, कहीं पर निकल रही है, इसकी प्रेजेंस चेक करने का एक तरीका होता है, और वो होता है कि अगर आप कहीं पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वहां पर आप एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाएं या फिर एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाएं, तो वो एक पॉप साउंड करके, एक छोटी सी साउंड करके वो बुझ जाती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप वहां पर एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाइए जहां पर गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाइए, तो वहां पर क्या होगा, वो एक साउंड करके बुझ जाएगी आपकी मैचस्टिक भी और आपकी कैंडल भी, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑफ इथेनॉल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। जो हमारा इथेनॉल है ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन होने के बाद में हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, वो हमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल से एक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है। तो अगर आप लोगों ने इथेनॉल यूज किया है और उसमें डाला है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इथेनॉल का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो वो क्या होगा, इथेनॉल का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, यहाँ पर इथ है यानी कि दो कार्बन है, तो दो कार्बन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इथीन होगा। तो अगर आप लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन कराएंगे विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इथीन होगा, और वहां पर H2O जो है वो भी फॉर्म होगा प्रोडक्ट्स के रूप में। और इसमें आप लोग क्योंकि देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ने इथेनॉल में से एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी रिमूव करा दिया, एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव करा दिया, इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। पानी का रिमूवल डिहाइड्रेशन कहलाता है और जो सब्सटेंस डिहाइड्रेशन करवाए उन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहते हैं। और क्योंकि H2SO4 ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ने इथेनॉल में से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कराया, इसलिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 72 पर आप लोगों को रिएक्शन भी दिखाई गई है CH3CH2OH विच इज इथेनॉल। अब इसके अंदर हमने हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो हमें मिलता है इथीन और पानी। और यहाँ पर हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो आपने इथेनॉल में डाला है उसको थोड़ा सा आप हीट कर देंगे। हीट कैसे करेंगे? आप वाटर बाथ में उबलते हुए पानी में अपने टेस्ट ट्यूब को रखेंगे तो वो हीट अप हो जाएगा और आपकी ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी और आप लोगों को इथीन और वाटर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अल्कोहल्स किसी भी व्यक्ति की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, लिविंग बीइंग्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अगर आप लोग लार्ज क्वांटिटी ले लेते हैं इथेनॉल की तो उससे क्या होता है कि आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया या फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, तो जो भी रेस्पिरेशन के अंदर रिएक्शंस होती हैं आप लोगों को पता है कि वहां पर ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं। साथ में ये जो अल्कोहल होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। इसका मतलब है कि आप लोगों का जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग भी स्टॉप हो जाती है, धीरे धीरे करके बहुत स्लो हो जाती है। और फिर ज्यादा अगर आपने कंज्यूम कर लिया तुरंत ही तो आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति उस वक्त बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके बाहर निकलते हैं उनके पैर बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाती है उनकी बॉडी, मेंटल कंफ्यूजन होता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता किसी चीज के बीच का डिफरेंस। और अगर बहुत ही ज्यादा किसी ने कंज्यूम कर लिया है तो वो तो बिल्कुल चल ही नहीं पाते बिकॉज वो बेहोश हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्कोहल्स क्या करते हैं, अल्कोहल्स हमारे कोऑर्डिनेशन को, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को स्टॉप करते हैं धीरे धीरे करके, और फाइनली जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया वो बेहोश हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने जिसने अल्कोहल लिया है हो सकता है उसको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी टेंशन भूल गए हैं, लेकिन उससे उनको नहीं समझ में आता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी कम हो रही है, सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से। ये तो इथेनॉल के नुकसान है। अगर इथेनॉल की जगह गलती से भी जरा सा भी मीथेनॉल अगर कोई कंज्यूम कर लेगा तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। मीथेनॉल जो होता है जिसका आप लोगों को पता होगा क्या होगा इसका फॉर्मूला, CH3OH मीथेनॉल है। अगर इसको आप यूज करते हैं गलती से भी जरा सा भी इसको यूज कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो इट कैन बी लीथल, उस व्यक्ति की जान जा सकती है। क्योंकि मीथेनॉल जो है वो क्या होता है हमारे लिवर में जाकर के ऑक्सीडाइज होता है और फॉर्मेशन होता है मीथेनल का। अब ये जो मीथेनल बना है ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसके साथ रिएक्ट करता है रैपिडली, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्वागुलेट कर देता है, उसे जमा देता है। तो बेसिकली हमारे सेल्स की फंक्शनिंग को खत्म कर दिया। एक सेल जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये रैपिडली रिएक्ट करते करते हमारे जो सेल्स हैं उनकी डेथ करवाता जाता है। और साथ में मीथेनॉल क्या करता है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमारी आंखों के अंदर, आप लोगों को पता होगा एक ऑप्टिक नर्व होती है, और मीथेनॉल जो होता है ऑप्टिक नर्व्स को भी अफेक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। जिस व्यक्ति ने मीथेनॉल कंज्यूम किया उसकी आंखें खराब हो सकती है, उसे दिखना बंद हो सकता है। और आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इथेनॉल जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें चीजें आसानी से घुल जाती हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने के लिए और भी कुछ चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका मिसयूज रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो इथेनॉल इंडस्ट्रीज में बन रही है इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और इसको कैसे अनफिट बनाते हैं, लोग इसको पी ना पाए, इस लायक इसको बनाते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पॉइजनस मिथेनॉल डाल देते हैं। आप लोगों को पता है कि मिथेनॉल कितना ज्यादा पॉइजनस है, उससे व्यक्ति की आंखें खराब हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो इथेनॉल बन रहा है वो लोग कंज्यूम ना करें, उनके कंज्यूम करने लायक ना रहे, उसको ऐसा बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा वो लोग मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, जिससे कि इथेनॉल जो है वो पॉइजनस हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं कि जो इथेनॉल है उसके अंदर कुछ डाइज मिला देते हैं, यानी कि कलर मिला देते हैं, जिसकी वजह से पहचाना जा सके कि कौन सी बॉटल के अंदर इथेनॉल रखी है। और ब्लू कलर, जनरली ब्लू कलर का डाई उसमें यूज किया जाता है, तो अगर अलग कलर की बॉटल होगी तो लोगों को पता रहेगा कि ये इथेनॉल है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें इथेनॉल के अंदर हम कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिलाते हैं, इसको कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अगर इथेनॉल के अंदर आपने मिथेनॉल मिला दिया है या फिर डाई मिला दिया है और उसकी प्योरिटी को थोड़ा बदल दिया है, तो ऐसे अल्कोहल को, ऐसे इथेनॉल को हम क्या कहेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 73 पर, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल का एक ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो शुगर केन के प्लांट्स होते हैं, शुगर केन के जो पौधे होते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और ये आप लोगों को कैसे पता चला, ये आपको इसलिए पता चला क्योंकि शुगर केन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट का अगर ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा होगा तो उतना ही ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। शुगर केन का जो जूस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर मोलासेस। अब मोलासेस क्या होते हैं, हिंदी में इसे शीरा कहते हैं। आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि जब गुड़ बनाया जाता है तो उस वक्त एक बहुत ही ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड जैसा कुछ बनता है, उसे शीरा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मोलासेस कहते हैं। ये जो मोलासेस बनती हैं गुड़ बनाने के प्रोसेस के टाइम पर, इसका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन करते हैं किसी भी शुगर के सोर्स पर, और वहां पर प्रोड्यूस करते हैं वो अल्कोहल या फिर एसिड। तो शुगर केन के अंदर तो बहुत सारा शुगर है, तो इसीलिए जो इसके शीरा बनता है, जो मोलासेस बनती है, इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसके ऊपर बैक्टीरिया का रिएक्शन कराते हैं, और उसी से वहां पर प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है। अब कुछ देश क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, इस अल्कोहल को पेट्रोल में मिला करके इसको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप अल्कोहल को बर्न करेंगे तो आप लोगों को केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में मिलेगा, जिसका मतलब है कि एक बहुत अच्छी एफिशिएंट बर्निंग वहां पर हो रही है, और ये बर्निंग भी इनसफिशियंट ऑक्सीजन हो रही है, यानी कि सफिशियंट एयर के अंदर मौजूदगी में हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिला, समझ में आया कि अल्कोहल जो है, जो इथेनॉल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल। अगर इसे जलाएं, बर्न करें, तो वहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और जब रिएक्शन होती है, कंबशन की रिएक्शन होती है, तो वहां पर बर्निंग होते वक्त बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मशीन चलाने के लिए या फिर अपने व्हीकल्स के मोटर को चलाने के लिए। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज जो हैं पेट्रोल में मिला करके अल्कोहल को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इथेनॉइक एसिड है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना था, दो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। तो नेक्स्ट हमारा इथेनॉइक एसिड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इथेनॉइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये जो एसिड है इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, जिनके नाम है, एक ही कंपाउंड के नाम है, और ये क्या है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्योंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। आप लोगों ने कभी सिरके का नाम सुना होगा, सिरका खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिरका होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का इन वाटर। पानी के अंदर आप एसिटिक एसिड को मिक्स कर देंगे, उसमें ज्यादा पानी होना चाहिए और कम एसिटिक एसिड होना चाहिए, तो ऐसा जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सिरका कहलाता है। सिरके का एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे अचार वगैरह बनाते हैं, काफी देशों में सिरका जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे अचार को काफी समय तक ठीक रखने के लिए। और प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे खाने की चीजों में, उनको हम डालते हैं ताकि खाने की चीजें ज्यादा समय तक खराब ना हो। जैसे कि ऑयल होता है प्रिजर्वेटिव, या फिर ये जो सिरका होता है प्रिजर्वेटिव, विनेगर इज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने खाने की चीजों को काफी लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए। अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का, वो होता है 290 केल्विन, जो कि बहुत ही कम है, और इसी वजह से ठंडियों के दौरान, ठंडी के मौसम में काफी जगहों पर, कोल्ड क्लाइमेट्स में जो ठंडी जगह होती है वहां पर ये जो इथेनोइक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब क्योंकि इस कंपाउंड का नाम ही है इथेनोइक एसिड, तो एसिड है इसीलिए इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, तो इसका कुछ एसिडिक नेचर जो है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ये एक एसिड है। लेकिन जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl, उनसे, उनके साथ अगर इसे हम कंपेयर करें इथेनोइक एसिड को, उनके मुकाबले में ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं मिनरल एसिड्स के मुकाबले में बहुत ही कमजोर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत आसानी से वो H+ और Cl- में टूट जाता है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी करने को कहा है, एक्टिविटी 4.7 पेज नंबर 73 पर है ये। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेक करना है जो एसिटिक एसिड है उसकी पीएच चेक करनी है, और आप लोगों को उसको कंपेयर करना है HCl के पीएच से। HCl जो है ये एक मिनरल एसिड है, और जो हमारा एसिटिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब आप लोगों को पीएच पेपर लेना है, जो लिटमस पेपर होता है उसको लेना है, आप लोगों को चेक करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी ले सकते हैं, लिटमस पेपर भी ले सकते हैं, दोनों पर ही आप लोगों को चेक करना है, और आपको ये चेक करना है कि पीएच कितना कितना होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड का और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है उसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 2.4, और जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 1। तो आप देख सकते हैं कि एसिड्स के केस में क्या होता है कि जितना कम पीएच होता है उतना ही स्ट्रांग हमारा एसिड होता है। तो HCl का पीएच 1 है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, और डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो है इसका पीएच 2.4 है तो ये थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो बात हो गई अबाउट द नेचर ऑफ एसिड्स, मिनरल एसिड और एसिटिक एसिड। हमने कंपेयर करके देख लिया कि एसिटिक एसिड जो है वो कितना स्ट्रांग है और मिनरल एसिड्स कितने स्ट्रांग है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ऑफ इथेनोइक एसिड, और इसमें से भी सबसे पहला जो रिएक्शन है वो आप लोगों को एक्टिविटी 4.8 करके समझ में आएगा, जो कि पेज नंबर 73 पर है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 1 ml ऑफ इथेनॉल लेना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है इसका मतलब कि प्योर इथेनॉल लेना है आप लोगों को। उसके अंदर आप लोगों को ऐड करना है 1 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम है एसिटिक एसिड का, और उसमें भी आप लोगों को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को आप लोगों को लेकर के जाना है, और एक बीकर जिसमें आपने गर्म पानी रखा हुआ है उसमें इसको आपको कुछ मिनट्स के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स के लिए इसे आपको हीट करना है। उसके बाद ये जो आपने बनाया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, 5 मिनट के बाद जब हीट हो चुका होगा तो इसको ले लीजिए अपने टेस्ट ट्यूब को, और एक ऐसे बीकर के अंदर जिसमें 20 से 50 ml पानी हो उसके अंदर आप इस सॉल्यूशन को जो टेस्ट ट्यूब में आपने बनाया है उसे मिक्स कर दो। आप लोग उस स्मेल को जब इनहेल करेंगे, आप उसकी खुशबू लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें से एक अलग तरीके की खुशबू आ रही होगी, वो ये बता रही है कि वहां पर कुछ रिएक्शन हुआ है। अब रिएक्शन क्या हुआ है वो समझिए, ये जो रिएक्शन हुआ है बिटवीन अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड, ये रिएक्शन इस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ईस्टर्स फॉर्म करते हैं। ईस्टर्स क्या होता है, ईस्टर भी एक तरीके का कंपाउंड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर जो आप लोगों ने इथेनोइक एसिड का इस्टरिफिकेशन करवाया है, तो इसमें आपने क्या किया है, अपने इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाया है विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल, और इसमें भी आपने एक कैटलिस्ट जो यूज किया है वो क्या है, वो एक एसिड है। और आपने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया है और उससे वहाँ पर रिएक्शन हुई है बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, और जो प्रोडक्ट मिला है वो एक ईस्टर है। अच्छा, अगर आप लोगों के पेज नंबर 73 पर जो ईस्टर दिखाया है वो इस तरीके का दिखाया है, जिसमें लिखा है CH3 C C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये जो ईस्टर का फॉर्मूला है ये गलत है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसे आप करेक्ट कर लो। अगर आपके भी बुक में इस तरीके का दिया है तो आप उसे करेक्ट कर लो। ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक और O और फिर CH2 CH3। फिर से एक बार सुन लो, आप लोगों को लिखना है CH3, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन C लिखोगे तो उसके साथ एक डबल बॉन्ड O बनाओगे और एक और बनाओगे सिंगल बॉन्ड O, और उस सिंगल बॉन्ड O के साथ फिर से एक और सिंगल बॉन्ड बनाओगे और लिखोगे CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड बनाओगे और लिखोगे CH3। इस तरीके का जो कंपाउंड होता है इसे कहते हैं ईस्टर, क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। और ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कैसे पहचानते हो आप लोग, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ होता है, यानी कि एक तो सी के साथ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होगा और एक सिंगल बॉन्ड ओ भी जुड़ा होना चाहिए। इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को ईस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 73 पर आप लोगों को जो रिएक्शन दी है इथेनोइक एसिड की और इथेनॉल की, तो प्रोडक्ट ईस्टर बना है और वाटर का रिमूवल हुआ है। तो आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इथेनोइक एसिड जो लिखा हुआ है उसे लिखो और इथेनॉल जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखो कि उसका OH जो है वो इथेनोइक एसिड के OH के बगल में आए, यानी कि बिल्कुल पलट दो, ऐसे पलट दो कि OH जो है वो इथेनोइक एसिड के सामने आए और CH2 CH3 जो है वो उल्टे साइड आए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप लोगों को OH रिमूव करना है फ्रॉम द इथेनॉल और H रिमूव करना है फ्रॉम इथेनोइक एसिड, तो वहां पर जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ये ईस्टर कंपाउंड है। ईस्टर्स जो होते हैं जनरली दे आर स्वीट स्मेलिंग, इनकी मीठी होती है स्मेल, एंड ईस्टर्स आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम्स बनाने में और फ्लेवर देने में, किसी खाने को फ्लेवर देने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग किसी एस्टर का रिएक्शन करवाएंगे विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोगों को वापस से अल्कोहल मिल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड इस बार मिलेगा वो कैसे मिलेगा आप लोगों को, CH3COONA ये मिलेगा और अल्कोहल मिल जाएगा। इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड वॉट आर सोप्स, सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत लंबे चेन हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन की कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उसमें जो ग्रुप लगा होगा वो CH3COONA होगा या फिर COOK होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो वो तो COOH होगा ग्रुप, लेकिन अगर उसका सॉल्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग को मिलेगा COONA या फिर COOK, और हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन उसके साथ अटैच होनी चाहिए। इस तरीके से अगर होगा कंपाउंड तो वो सोप होता है। अब आप लोग पेज नंबर 74 पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन है उसमें आप लोगों को सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन दिखाया है, जिसमें आप लोगों ने ईस्टर का रिएक्शन करवाया है विथ NaOH और आपको प्रोडक्ट मिला है एल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोडियम, एक तो इसमें सोडियम मेटल है और जो कटायन है वो सोडियम से बनेगा, Na प्लस बनेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस मिलेगा, और ऐसे कंपाउंड्स जिसका ब्रेकडाउन करे तो एक अनायन और एक कटायन मिले इन्हें सॉल्ट कहते हैं, और यहाँ पर कटायन जो है वो सोडियम है इसीलिए इसे सोडियम सॉल्ट कहते हैं, और ये जो सॉल्ट बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है इसीलिए इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो आप लोगों को रिएक्शन दिखाई है इसमें जो ईस्टर है वो क्या है, CH3COOC2H5 है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि पेज नंबर 73 पर जो आप लोगों को ईस्टर प्रोडक्ट में दिखाया है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वो अगर गलत बनाया है तो उसे ठीक कर लेना। तो ये तो बात हो गई अबाउट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, अब बाकी के जो रिएक्शंस है वी विल स्टडी देम इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने जो आज पढ़ा है आप लोग उसे रिवाइज कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप अपने टीचर से जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।